arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम
एक कहानी का करुण अंत। नाम की वो वैश्या थी, पर तन की मन की नहीं। नाम था उसका चंपा, नाम के अनुरूप उसका रंग था। चंपई रंग में उसका रूप चमक उठता था। रूप की ही नहीं बल्कि संगीत की भी वो रानी थी। रूप और संगीत का ऐसा समन्वय विरला ही देखने को मिलता है। उसका गाना सुनने और उसके रूप का रसपान करने वालों की भीड़ उमड़ी रहती थी, पर आश्चर्य तो तब होता था जब उसका कड़ा हुक्म कि कोई उसके कोठे पर रात 11 बजे के बाद पैर नहीं रखेगा, जबकि उसी समय ग्राहकों की भीड़ शुरू होती है और वातावरण में गर्माहट। पैसे की चंपा को कमी नहीं थी, उस पर तो पैसे बरसाकर लोग अपना हुभाग्य समझते थे। चंपा के नज़दीकी मित्र ही केवल जानते थे कि 11 बजे के बाद की पाबंदी उसने क्यों लगाई थी। चंपा का विचार था कि रात 11 बजे के बाद हर पत्नी अपनी दिनचर्या निपटा कर अरमान संजोए पति के पास आती है, और उस समय उसका पति कोठे पर आता है तो वो कितनी दुखी होती है और उसके दिल से बद्दुआ निकलती है। पर यदि उसका पति जल्दी लौट आता है तो पत्नी की आत्मा प्रसन्न होकर दुआएं देती है। एक बात का वो और भी पता लगवाती रहती थी कि कौन सा पति उसके कोठे के बाद घर न जाकर दूसरे कोठों पर जाता है, तो वो उस शख्स को दिल से माफ नहीं करती और उसे अपने कोठे पर दूसरी बार पैर नहीं रखने देती थी। इसलिए जो लोग उसका गाना सुनने तथा उसके रूप का रसपान करना चाहते थे, वे ऐसी गलती कभी नहीं करते थे और उसके चहेते बने रहते थे। जब ये पति चंपा का ऐलान अपनी पत्नियों को सुनाते तो पत्नियों के दिल से चंपा के लिए दुआएं निकलती और वे खुशी खुशी उन्हें चंपा के कोठे पर भेजती। पति भी चंपा के प्रिय बने रहते और पत्नी को खुश देखकर उनका गृहस्थ जीवन भी खुशहाल रहता। लोगों का विचार था कि शायद चंपा किसी गरीब की पत्नी थी। पति वैश्यागामी और शराबी था। उस समय भी उसका रूप कम नहीं था, पर पति की नजरों में वो खोटा सिक्का थी। वो इस खोटे सिक्के को चलाना चाहता था और इसमें कामयाब भी हो गया जब उसके दोस्तों ने उस खोटे सिक्के को चांदी के सिक्कों में बदलने की सलाह दी। दोस्त ने अपने जेब से पैसे खर्च कर गहने कपड़ों से उसे सजा कर एक रईस के सामने परोस दिया। वो बेचारी उन राक्षसों से कैसे स्वयं को बचा पाती, और वो उसे लूट के चले गए। उसने देखा कि रोज ही उसे बेचने की साजिश हो रही है, तब उसने व्यवसाय समझकर अपना लिया और एक रात पति को झांसा देकर घर से निकल भागी। वो जानती थी कि उसका पति उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, अतः वो भागी भागी स्टेशन पहुंची और बिना सोचे रेलगाड़ी में बैठ गई। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी, घर से जेवर तथा नगद वो लेकर आई थी। जिस स्टेशन पर वो उतरी वो बड़ा स्टेशन था, अपने व्यवसाय के लिए वही उसको उचित लगा। टैक्सी लेकर एक शानदार होटल में पहुंची। शाम को अपने रूप को प्रसाधनों से दुगना कर वो होटल के हॉल में बैठ गई, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थीं। उस अप्रतिम रूप को देखकर सभी की आंखें चुंधिया गईं, और ये तो सभी समझ रहे थे कि पैसे के जोर से वो इस अप्रतिम रूप को खरीद सकते हैं। बस एक से एक ऊंची बोली लगने लगी। हीरे मोतियों और रुपयों से वो लद गई। उसने फिर एक शानदार कोठी खरीदकर अपना अड्डा जमाया, नाम रखा चंपा। यही उसकी कहानी थी जो केवल उसके विश्वस्त दोस्त को ही मालूम थी। उधर उसका पति पागलों के समान उसे ढूंढता रहा और एक दिन पता लगाते लगाते वो उस शहर में पहुंच गया। चंपा के रूप की शोहरत सुनकर वो समझ गया कि हो ना हो ये उसकी पत्नी नंदा ही है। वो चंपा के कोठे में घुसने लगा। उसकी फटी हालत देख पहरेदारों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो चीखता रहा कि चंपा उसकी पत्नी है। सभी उसे पागल समझकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। चंपा समझ गई कि उसका पति उसे परेशान करेगा। उससे बचने के लिए एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, जब सभी उसे पागल समझ रहे हैं तो सचमुच उसे पागलखाने क्यों न भेज दिया जाए। वो चीखता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। चंपा ने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये पागल उसकी जान लेना चाहता है और इस पर पूरी निगरानी रखी जाए। चंपा जैसी नामी हस्ती की बात अधिकारी कैसे नहीं मानते। चंपा के सभी कृपा पात्र बनना चाहते थे। इतनी चौकसी पर भी एक दिन चंपा का पति पागलखाने से भाग निकला। अब वो चंपा का पक्का शत्रु बन गया था। उसे लगा कि जिस रूप की बदौलत वो इतनी शोहरत बटोर रही है, क्यों ना उस पर तेजाब डालकर उसे इतना कुरूप बना दूं कि लोग उसकी तरफ थूकें भी ना। उसने तेजाब की एक बोतल खरीद ली और अवसर की ताक में रहने लगा। अपने पति के पागलखाने से भागने की खबर चंपा को मिल गई थी। वो समझ गई कि उसका पति अब उसे छोड़ेगा नहीं, वो उससे बदला लेने का प्रयास कर रहा होगा। अतः वो भी सतर्क रहने लगी और एक दिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। अपने को पुलिस से बचाने के चक्कर में तेजाब की बोतल उसके ऊपर उलट गई। उसकी करुण आवाज चारों तरफ गूंज उठी। चंपा ने सुना तो उसके मुंह से निकला जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य को अपने कर्मों का फल ऐसे ही मिलता है। चंपा का पति मरा तो नहीं, पर अपंग होकर भीख मांगने लगा। उसकी ये हालत देखकर लोग उस पर हंसने लगे। लोग एक दूसरे से कहते, ये बेवकूफ पंगा भी लेने चला तो चंपा जैसी हस्ती से। पति से निश्चिंत होकर चंपा अपनी संगीत साधना में जुट गई। एक दिन रात को 12 बजे वो एक करुण गीत गा रही थी। गाना भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगने पर था, जिसे वो बड़ी तन्मयता से गा रही थी। और फिर यह सिलसिला चलता रहा। गाने के समय उसका आदेश था कि व्यवधान ना डाले। सभी पहरेदार सतर्क रहते थे। एक रात एक साधु ने पहरेदारों से कहा कि वो चंपा से मिलना चाहता है। साधु के तेजस्वी चेहरे से पहरेदार जैसे उसके गुलाम हो गए, खासकर उनकी आंखों के कारण। उस साधु की आंखों में ऐसे हुक्म का भाव था जिसे टालना नामुमकिन था। पहरेदारों ने उसे हाथ जोड़ा और चंपा के पास जाकर कहा कि एक साधु जिद किए बैठा है कि वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगा, चाहे उसे जीवन भर बैठना पड़े। चंपा को गुस्सा आ गया। वो बोली, उस ढोंगी साधु को निकाल बाहर करो। पहरेदार बोला, एक बार यदि आप उसकी शक्ल देख लेंगी तो ये शब्द नहीं कहेंगी। ऐसी चमकती आंखें और ऐसा कांति वाला चेहरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चंपा ने सोचा, ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो देखने में हर्ज ही क्या है। रात के कपड़ों में ही चंपा निकल पड़ी। उन पारदर्शी कपड़ों में उसका तराशा शरीर सुंदरता को दूनी कर रहा था। अभिमानवश उसने सोचा, इस रूप को देखकर बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं तो भला इसकी क्या बिसात। गर्व से चलती चंपा साधु के सामने पहुंच गई। साधु ने उपेक्षा से उसकी ओर देखते हुए कहा, चंपा तुमने अपने रूप से हजारों को धराशायी किया होगा, पर इस साधु को तुम नहीं टिका पाओगी। इस रूप के सिवा तुम्हारे पास है ही क्या? जिस दिन ये रूप ढलेगा तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। इसके बाद साधु ने इतनी सारगर्भित बातें की कि चंपा उनकी योग्यता की कायल हो गई। उसने सोचा, क्यों न वो साधु को अपने पास कुछ दिन रख के ज्ञान की बातें सीखें। वास्तव में उसके पास है ही क्या जो वृद्धावस्था में शांति प्रदान करेगा। उसने हाथ जोड़कर साधु से कहा, महाराज आप मेरे पास रहकर मुझे भी ज्ञान का पाठ पढ़ाएं तो बड़ी कृपा होगी। वृद्धावस्था में यही ज्ञान मुझे शांति प्रदान करेगा। साधु ने तिरस्कार से उसकी ओर देख कर कहा, मैं कोई स्कूल मास्टर तो नहीं जो तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं। मैं तो चलता फिरता घूमता रहता हूँ, किसी जगह रुकना हम साधुओं का काम नहीं है। रहा ज्ञान का पाठ, तो रास्ते में जहाँ भी ठहरते हैं वहाँ रहने वालों को जो सुनाना होता है सुनाकर आगे बढ़ जाते हैं। पर तुम जैसी स्त्री के लिए कष्ट सहना कठिन होगा। चंपा ने कहा, ये ठीक है, पर आप कृपया कुछ दिन यहाँ रुक जाएं तो बड़ी कृपा होगी। साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, चंपा तुम इतना कह रही हो तो मुझे अपने सिद्धांतों को तोड़ना होगा। तुम्हें ज्ञान की शिक्षा देने के लिए मैं इसलिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि तुम में कुछ सीखने की ललक है। ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के बीच समय निकालना मुश्किल होता है। साधु को रहने के लिए चंपा ने एक शानदार कमरा दिया। पूजा की सारी सामग्री उस कमरे में रखवा दी। उसने आदेश दिया कि साधु के बिना बुलाए कमरे में कोई नहीं जाएगा। नौकर चाकर सभी साधु से प्रभावित थे, अतः वे हर घड़ी उनका ख्याल रखते थे। चंपा दिन रात साधु के साथ रहती और उनकी हर आज्ञा का पालन करती। एक रात चंपा ने अपना शरीर साधु को सौंप दिया। न जाने कौन सी शक्ति थी जो उसे ऐसा करने को बाध्य कर रही थी। वो तो ज्ञान का पाठ पढ़ने आई थी, साधु ने उसे काम का पाठ पढ़ा दिया। होश में आने पर उसे मन हुआ कि न जाने किस शक्ति से अभिभूत हो उसने ऐसा कर डाला। साधु से उसने ज्ञान के साथ बहुत कुछ सीख लिया। दिनों दिन उसने ऐसी बातें भी साधु से सीखी जो आम आदमी से परे थीं। अब उसे सब कुछ छोड़कर साधु से बातें करने में रस आता। साधु भी उसे ज्ञानवर्धक बातें सुनाता। धीरे धीरे वो संगीत की आराधना छोड़ धर्म की बातें सुनने में समय व्यतीत करने लगी। बाहर की दुनिया धीरे धीरे उससे छूटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसने अपना व्यवसाय एकदम छोड़ दिया। संन्यासिनी सा जीवन व्यतीत करने लगी वो। उधर साधु चंपा को मोह माया से दूर कर अपना मतलब साधने लगा। वो जानता था चंपा के पास करोड़ों की संपत्ति है, हीरे मोतियों का ढेर है। साधु ऐसी तरकीब से उसका सब कुछ ऐंठ लेना चाहता था कि वो स्वेच्छा से सब कुछ उसे पकड़ा दे। साधु सम्मोहन विद्या भी जानता था, जिसका वो समय समय पर इस्तेमाल भी किया करता था। जो उसकी आंखों में झांक लेता वो उसी के कहने पर चलता। उसके सुदर्शन शरीर का भी इसमें योगदान था। एक दिन ऐसा आया जब अपनी सारी संपत्ति चंपा ने उस साधु को सौंप दी। इसमें बहुत कुछ योग उसकी आंखों का था। जब पक्का लिखा पढ़ी हो गई तब असली रूप साधु ने चंपा को दिखाया। उसने चंपा के लिए एक झोपड़ी बनवाकर उसे उसमें रहने को बाध्य किया। अब चंपा उसकी आंखों से दूर हो चुकी थी। जब तक उसे इसका एहसास हुआ अपनी बेवकूफी पर उसे बहुत रोना आया, पर तब तक उसकी पूरी संपत्ति साधु कानूनन अपने नाम करा चुका था। अब न उसके पास रूप था और न संपत्ति। जिस संगीत पर लोग मुग्ध होते थे वो गला अपना जादू अब तक खो चुका था। उसे लगा शायद पति को पागलखाने भेजने से निकली आह ही उसकी इस हालत का कारण है। साधु ने सबसे कहा कि चंपा पागल हो गई है, अपना सब कुछ छोड़कर सन्यासिनी हो गई है, भगवान की आराधना में जीवन व्यतीत करना चाहती है। एक दिन ऐसा आया जब चंपा को भीख मांगने की नौबत आ गई। संगीत और रूप के चमकते सितारे का ऐसा करुण अंत होगा ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन।